ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। काठमांडू जिला अदालत ने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने छाने के विरुद्ध संगठित अपराध संबंधी अभियोग को वापस लेने की दी अनुमति। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 12 का परीक्षा परिणाम हुआ सार्वजनिक। पिछले 10 वर्षों में वितरित कृषि तथा पशुपंछी अनुदानों की जांच के लिए गठित हुआ कार्यदल। और इसराइल और लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम पर बन गई है सहमति। अब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक ने सार्वजनिक खरीद, संपत्ति शुद्धिकरण, सहकारी तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संबंधी 4 अध्यादेशों को स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही आर्थिक विधेयक 2083 और राष्ट्र ऋण उठाने संबंधी विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित किया गया। बैठक में उठे प्रश्नों का उत्तर देते हुए अर्थमंत्री डॉ स्वर्णिम बागले ने कहा कि बजट सामाजिक न्याय सहित उदार अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार अल्पकालीन लोकप्रियता के बजाय दीर्घकालीन आर्थिक सुधार, उत्पादन वृद्धि और पूर्वाधार विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। सांसदों ने शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मौलिक अधिकारों से जुड़े क्षेत्रों पर लगाए गए कर वापस लेने, स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहन देने और विदेशी ऋण को केवल उत्पादन मूलक क्षेत्रों में खर्च करने की मांग की। बैठक के प्रारंभ में विपक्षी सांसदों ने सरकार की कार्यशैली, नेपाल भारत सीमा संबंधी विषय और सुशासन के मुद्दों को लेकर विरोध दर्ज कराया। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के संसदीय दल के नेता ज्ञानेंद्र बहादुर शाही ने विद्युतीय सवारी साधनों में कर छली और बजट सूचना रिसाव प्रकरण की संसदीय जांच की मांग की। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक आषाढ़ 11 गते सुबह 11 बजे होगी। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक ने विभिन्न अध्यादेशों को बहुमत से स्वीकृति प्रदान की। बैठक में गृहमंत्री सुधन गुरुंग ने सिंधुली पुलिस की हिरासत में श्रीकृष्ण विश्वकर्मा की मृत्यु संबंधी विषय पर जानकारी देते हुए कहा कि जांच प्रतिवेदन में प्रहरी द्वारा मारपीट किए जाने का प्रमाण नहीं मिला है। उन्होंने कहा यदि नए तथ्य सामने आते हैं तो सरकार आवश्यक जानकारी देगी। वहीं भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री प्रतिभा रावल ने कहा कि सरकार भूमि संबंधी समस्याओं के समाधान और किसानों के मोहियानी अधिकार की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सांसदों ने महिला हिंसा, भूमिहीन नागरिकों के व्यवस्थापन और सामाजिक संजाल में महिलाओं के विरुद्ध आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने कक्षा 12 का परीक्षा परिणाम सार्वजनिक कर दिया है। बोर्ड के अनुसार नियमित परीक्षा में शामिल 3,32,241 विद्यार्थियों में से 2,31,770 विद्यार्थियों ने सभी विषयों में ग्रेड प्राप्त किया है। इसी प्रकार आंशिक वाले 85,929 विद्यार्थियों में से 36,420 विद्यार्थियों ने ग्रेड हासिल किया है। कुल 4,18,170 परीक्षार्थियों में से 2,68,190 विद्यार्थियों ने सभी विषयों में ग्रेड प्राप्त किया है। परिणाम के अनुसार नियमित वाले 69.75%, आंशिक वाले 42.38% और कुल 64.13% विद्यार्थी सफल रहे हैं। बोर्ड ने बताया कि गत वैशाख 14 से 27 गते तक आयोजित परीक्षा का परिणाम परीक्षा संपन्न होने के 35 दिन के भीतर सार्वजनिक किया गया है। मंत्रिपरिषद की आज की बैठक ने डॉ गोपाल प्रसाद भट्ट को नेपाल धितोपत्र बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा नेपाल विशेष सेवा आयन संबंधी विधेयक, सहकारी कानून संशोधन और अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों को संघीय संसद में पेश करने की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। काठमांडू जिला अदालत ने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने के विरुद्ध संगठित अपराध संबंधी अभियोग हटाने की अनुमति दे दी है। अदालत ने ठगी संबंधी अभियोग यथावत रखते हुए संगठित अपराध संबंधी आरोप कायम न रहने का आदेश दिया है। जिला सरकारी वकील कार्यालय ने अभियोग पत्र संशोधन का निवेदन दायर किया था। इससे पहले कास्की और परसा की अदालतें भी संगठित अपराध संबंधी अभियोग हटाने की अनुमति दे चुकी हैं। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो 4G नेपाल टेलीकॉम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलीकॉम को 4G।
गेम खेल्दा नि टेन्सन नोजी नेपाल टेलिकमको 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकमको 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। कृषि वन तथा पर्यावरण मंत्री गीता चौधरी की पहल पर पिछले एक दशक में वितरित कृषि तथा पशुपालन अनुदानों की जांच के लिए 5 सदस्यीय कार्यदल का गठन किया गया है। मंत्रालय के अनुसार आर्थिक वर्ष 2072-73 से अब तक प्रदान किए गए कृषि एवं पशुपालन अनुदानों की समीक्षा और जांच के लिए सहसचिव बद्री प्रसाद दाहाल के संयोजकत्व में कार्यदल बनाया गया है। कार्यदल को 6 महीने के भीतर विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। कार्यदल पुराने प्रतिवेदनों की पुनः समीक्षा करेगा, अनुदान दुरुपयोग के मामलों की पहचान करेगा और सुधार के लिए आवश्यक सुझाव देगा। साथ ही प्रभावकारी प्रणालियों का अध्ययन कर अच्छे अभ्यासों के आधार पर सिफारिशें भी प्रस्तुत करेगा। सरकार हर साल कृषि उत्पादन वृद्धि और व्यावसायिक कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न अनुदान कार्यक्रम संचालित करती रहती है। हालांकि लंबे समय से ये आरोप लगता रहा है कि अनुदान की राशि वास्तविक और सीमांत किसानों तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुंच सकी और निगरानी व्यवस्था कमजोर रही। मंत्रालय ने कार्यदल को नियमित रूप से प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए अनुदान वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, प्रभावकारी और जवाबदेह बनाने पर विशेष ध्यान देने को कहा है। सरकार ने तापरे जुंग के ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल मुक्कुमलुंग पाथीभरा में प्रस्तावित केबल कार परियोजना को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद के समाधान के लिए 7 सदस्यों का कार्यदल गठित किया है। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय के सचिव स्तरीय निर्णय के अनुसार प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के सामाजिक विकास विशेषज्ञ विश्व राय के संयोजकत्व में कार्यदल बनाया गया है। कार्यदल को केबल कार निर्माण से जुड़े विवादों और समस्याओं की पहचान कर उनके समाधान के लिए 15 दिनों के भीतर सुझाव प्रस्तुत करने का दायित्व दिया गया है। कार्यदल में सभी पक्षों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। इसमें पूर्वाधार विकास मंत्रालय के वरिष्ठ डिवीजनल इंजीनियर, केबल कार निर्माण का विरोध कर रहे पक्ष के प्रतिनिधि, पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति के प्रतिनिधि, निर्माण कंपनी के प्रतिनिधि, गृह मंत्रालय के उप सचिव तथा प्रधानमंत्री सचिवालय के सहसचिव को सदस्य बनाया गया है। सरकार का कहना है कि कार्यदल सभी सरोकार वाले पक्षों से संवाद कर विवाद का सहमति आधारित समाधान खोजने और परियोजना संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक सुझाव देगा। राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल ने कहा है कि चलचित्र केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि देश की भाषा, संस्कृति और परंपरा को संरक्षित और प्रचारित करने का प्रभावी साधन है। चलचित्र विकास बोर्ड द्वारा आयोजित राष्ट्रीय तथा विशेष चलचित्र पुरस्कार समारोह में वरिष्ठ कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठ को दीर्घ साधना सम्मान प्रदान किया गया। मौके पर ऊन को स्वेटर उत्कृष्ट चलचित्र घोषित हुआ। नवीन चौहान उत्कृष्ट निर्देशक, नीर शाह उत्कृष्ट अभिनेता और मीरुना मगर उत्कृष्ट अभिनेत्री के रूप में सम्मानित हुए। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इसराइल और लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम पर सहमति बन गई है। अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से BBC ने यह जानकारी दी है। यह समझौता आज स्थानीय समयानुसार शाम 4 बजे लागू हो गया। इसराइली सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफरिन ने एक बयान में कहा, इसराइल युद्ध विराम की स्थिति में है, अगर जरूरत पड़ी तो इसराइल लड़ाई जारी रखने के लिए भी तैयार है। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक रात भर इसराइली हवाई हमलों में दक्षिणी लेबनान में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई। वहीं इसराइल की सेना का कहना है कि उसके 4 सैनिक भी मारे गए हैं। इसराइल डिफेंस फोर्सेस IDF ने इससे पहले कहा था कि उसने ईरान समर्थित सशस्त्र संगठन हिजबुल्लाह से जुड़े 80 ठिकानों को निशाना बनाया। IDF ने दावा किया कि इन हमलों में हिजबुल्लाह के दर्जनों सदस्य मारे गए। इस हफ्ते की शुरुआत में अमेरिका और ईरान ने युद्ध को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते में लेबनान समेत सभी मोर्चों पर सैन्य अभियानों को रोकने की अपील भी शामिल थी। गुरुवार को अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वांस ने लेबनान में हमलों को लेकर इसराइल को झिड़का भी था। उससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को लेकर तीखी बातें कर चुके हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। काठमांडू जिला अदालत ने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने के विरुद्ध संगठित अपराध संबंधी अभियोग को वापस लेने की दी अनुमति। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 12 का परीक्षा परिणाम हुआ सार्वजनिक। पिछले 10 वर्षों में वितरित कृषि तथा पशुपंछी अनुदानों की जांच के लिए गठित हुआ कार्यदल और इसराइल और लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम पर बन गई है सहमति। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।